ملوک کی دوسری کتاب 17 باب۔ ہوشیا اسرائیل کا آخری بادشاہ۔
شاہ یہودا آحاز کے 12 برس ہوشیا بن ایلا نے سامرا میں اسرائیل پر 9 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کے حضور شرارت کی، لیکن اسرائیل کے بادشاہوں کی طرح نہیں جو اس سے پہلے تھے۔ اور اشور کے بادشاہ شلمن آسر نے اس پر چڑھائی کی، اور ہوشیا اس کا خادم ہو گیا اور اس کا خراج گزار بنا۔ اور شاہ اشور کو معلوم ہوا کہ ہوشیا نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور کہ مصر کے بادشاہ سوئے کے پاس خط بھیجے، اور کہ مصر کے بادشاہ سوئے کے پاس قاصد بھیجے، اور شاہ اشور کو خراج ادا نہیں کیا جیسا کہ وہ ہر سال کرتا تھا۔ تو شاہ اشور نے اسے پکڑا اور باندھ کر قید خانے میں بھیجا، اور شاہ اشور نے تمام ملک پر چڑھائی کی اور سامرا پر گیا اور 3 برس تک اس کا محاصرہ کیا۔ اور ہوشیا کے 9 برس میں شاہ اشور نے سامرا کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اشور کو لے گیا، اور انہیں حلا میں حابور ندی کے پاس جوزان میں اور مادیوں کے شہر میں بسایا۔
اسرائیل کی اسیری۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کیا، جو انہیں ملک مصر سے شاہ فرعون کے ہاتھ کے نیچے سے باہر نکال لایا، اور دوسرے معبودوں کی پرستش کی، اور ان قوموں کے دستوروں پر جنہیں خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا، اور ان پر جو اسرائیل کے بادشاہوں نے بنائے چلے۔ اور بنی اسرائیل نے پوشیدگی میں ایسے کام کیے جو خداوند ان کے خدا کے حضور ناراض تھے، اور اس شہروں میں پہرہ داروں کے برج سے لے کر مستحکم شہر تک اپنے لیے اونچی جگہیں بنائیں، اور اپنے لیے ستون اور کھمبے ہر ایک اونچی پہاڑی پر اور ہر ایک سبز درخت کے نیچے قائم کیے، اور وہاں سب اونچی جگہوں پر ان قوموں کی مانند جنہیں خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا خوشبوئیاں جلائیں، اور خداوند کو غصہ دلانے کے لیے برے کام کیے، اور بتوں کی مکروہات کی پرستش کی جس کی بابت خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے اپنے تمام انبیاء اور غیب بینوں کی زبان سے اسرائیل اور یہودا پر شہادت دے کر فرمایا کہ تم اپنی بری راہوں سے پھرو اور میرے سب احکام اور قوانین کو مانو بامطابق اس تمام شریعت کے جس کا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا، اور جو میں نے اپنے بندوں انبیاء کی زبان سے تمہیں بھیجی، پر انہوں نے نہ سنا اور اپنی گردنوں کو سخت کیا، اپنے باپ دادا کی گردنوں کی مانند جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہ لائے، اور اس کے فرائض اور عہد کو جو اس نے ان کے باپ دادا سے باندھا، اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کے خلاف دیں رد کیا، اور بطالتوں کی پیروی کی، اور بےہودگی سے ان قوموں کے پیچھے چلے جو ان کے ارد گرد تھیں جن کی بابت خداوند نے حکم دیا कि तुम उनके से काम मत करो। और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सारे अहकाम को तर्क किया और अपने लिए घड़े हुए दो बछड़े बनाए और खंबे लगाए और आसमान के सारे लश्कर को सजदा किया और बाल की प्रस्तिश की और अपने बेटों और अपनी बेटियों को आग में से गुजारा और गैब गोई और फालगिरी इस्तेमाल की और अपनी जानों को बेच दिया ताकि खुदावंद की निगाह में शरारत करके उसे गुस्सा दिलाएं। तब खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और उसने उसे अपनी नजर से गिरा दिया और फक्त यहूदा के कबीले के सिवा कोई ना बचा। और यहूदा ने भी खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को ना माना और इसराइल के दस्तूरों पर जो उन्होंने बनाए थे चले। तो खुदावंद ने इसराइल की तमाम नस्ल को रद्द किया और उन्हें जलील किया और लुटेरों के हाथ में उन्हें हवाले किया, यहां तक कि उसने अपने सामने से उन्हें दूर कर दिया, क्योंकि उसने इसराइल को दाऊद के घराने से चाक किया। तो उन्होंने यारबाम बिन नबात को बादशाह बनाया। तो यारबाम ने इसराइल को खुदावंद से जुदा कर दिया और उन्हें भारी गुनाह में डाला और बनी इसराइल यारबाम के उन सब गुनाहों पर चलते रहे जो उसने किए थे और उनसे बाज ना आए, यहां तक कि खुदावंद ने अपने हजूर से इसराइल को दूर किया, जैसा कि खुदावंद ने अपने सब बंदों अंबिया की जुबान से कहा था। सो इसराइल अपने मुल्क से असीर होकर अशूर को गए, जैसा कि आज के दिन तक है।
सामरी मजहब और शाह अशूर, बाबल और कूत और अव्वा और हमात और सिफरवाइम के कई बाशिंदगान को लाया और बनी इसराइल की जगह उन्हें सामरा के शहरों में बसाया। तो उन्होंने सामरा पर कब्जा किया और उसके शहरों में सकूनत करने लगे और वो वहां अपनी सकूनत करने के शुरू में खुदावंद से ना डरे। सो खुदावंद ने उन पर शेर भेजे जिन्होंने बाज को मारा। तो उन्होंने अशूर के बादशाह से बात करके कहा कि वो कौमें जिन्हें तूने लाकर सामरा के शहरों में बसाया उस मुल्क के खुदा के कानून को नहीं जानती, तो उसने उन पर शेर भेजे हैं और वो उन्हें मार डालते हैं क्योंकि वो इस मुल्क के खुदा के कानून को नहीं जानती। तब अशूर के बादशाह ने हुक्म देकर कहा कि उन काहिनों में से जिन्हें तुम वहां से असीर करके लाए हो, एक को उनके पास भेजो कि वो जाए और वहां रहे और वहां के खुदा का कानून उन्हें सिखाए। तो उन काहिनों में से जिन्हें वो सामरा से असीर करके लाए थे, एक आया और बैतेल में बसा और उन्हें सिखाने लगा कि किस तरह वो खुदावंद से डरें। पर हर एक कौम ने अपने लिए माबूद बनाए और उन्हें ऊंची जगहों के मंदिरों में जो सामरियों ने बनाए थे रखा। हर एक कौम ने अपने शहरों में जिनमें वो रहते थे। बस बाबल के रहने वालों ने सुकवत बनूत को बनाया और कूत के रहने वालों ने नीरजल को बनाया और हमात के रहने वालों ने अशीमा को बनाया और अवाइयों ने निजस और तरताक को बनाया और सिफरवाइमी अपने बेटों को सिफरवाइम के माबूदों अदर मलिक और अन मलिक के लिए आग में जलाते थे। और वो खुदावंद से भी डरते थे और उन्होंने अपने लिए अदना लोगों में से ऊंची जगहों के लिए काहिन बनाए जो उनके लिए ऊंची जगहों के मंदिरों में कुर्बानी गुजरानते थे, और वो खुदावंत की प्रस्तिश करते और अपने माबूदों की भी खिदमत करते थे। उन कौमों की आदत के मुआफिक जिनके दरमियान से वो असीर होकर गए थे, और वो आज के दिन तक अपनी पहली आदतों के मुआफिक करते हैं। वो खुदावंत से डरते नहीं और ना बमुजब उसके कवानीन और फरमानों, और ना बमुताबिक उसकी शरीयत और अहकाम के अमल करते हैं, जिनका खुदावन ने बनी याकूब को, जिसका नाम उसने इसराइल रखा, हुक्म दिया, और खुदावन ने उनके साथ अहद बांधा और उन्हें हुक्म देकर कहा, अजनबी माबूदों से मत डरो और ना उन्हें सजदा करो और ना उनकी प्रस्तिश करो और ना उनके लिए कुर्बानी करो। मगर खुदावंद जिसने तुम्हें अपनी अजीम कुव्वत और बढ़ाए हुए बाजू से मुल्क मिस्र से बाहर निकाला, उसी से तुम डरो और उसी को सजदा करो और उसी के वास्ते कुर्बानी गुजरानो। और उन कवानीन और फरमानों और शरीयत और अहकाम को जो उसने तुम्हारे लिए लिखे ताकि तुम उन पर अमल करो, उन्हीं को तुम अपने सारे दिनों में मानो और दूसरे माबूदों से मत डरो। और जो अहद उसने तुम्हारे साथ बांधा उसे मत भूलो और दूसरे माबूदों से ना डरो, बल्कि तुम खुदावंद अपने खुदा से डरो और वही तुम्हें तुम्हारे सारे दुश्मनों के हाथ से छुड़ाएगा। लेकिन उन्होंने ना सुना, बल्कि अपने पहले दस्तूरों पर अमल करते रहे। तो ये कौमें खुदावंद से डरती थीं और अपनी खोदी हुई मूर्तों की परस्तिश करती थीं, और ऐसा ही उनके बेटे और उनके बेटों के बेटे, जैसा उनके बाप दादा ने किया, वैसा वो भी आज के दिन तक करते हैं।